आज हम आपके लिए लेकर आए हैं सीनियर सेकेंडरी लेवल के लर्नर्स के लिए आज सब्जेक्ट लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, और जो आज टॉपिक रहेगा वो है अरेंजमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ लाइब्रेरी मटेरियल। इस टॉपिक पर विस्तार से जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मिस मंजू चुरुंगू जी। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका।
थैंक यू वेरी मच। आई वेलकम यू ऑल लर्नर्स हियर। आज का जो हमारा लेसन है वो है अरेंजमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ लाइब्रेरी मटेरियल्स। क्यों ये जरूरी है, ये मटेरियल को अरेंज करना और इसकी मेंटेनेंस कितनी जरूरी है, ये सब आप सभी लोगों को पता है कि किसी भी चीज को जब हम बनाते हैं, रखते हैं, उसमें मेंटेनेंस सबसे इम्पॉर्टेंट चीज हो जाती है। इसी तरह से जो भी लाइब्रेरीज हमारी हैं, तभी वो हम उन्हें आगे तक लेके जा पाते हैं जब हम उन चीजों को एक तरीके से मेंटेन करते हैं, उस मटेरियल की एक अच्छी तरह से हम उसकी देखभाल करते हैं। आज जो हम आपको मेनली जो बताएंगे, इससे रिलेटेड क्या इश्यूज होते हैं और किस तरह का अरेंजमेंट सबसे अच्छा अरेंजमेंट माना जाता है, किस तरह की लाइब्रेरी के लिए कौन सा अरेंजमेंट अच्छा होता है बुक्स को अरेंज करने का, और मेंटेनेंस में कितनी चीजें जरूरी हैं, उस सब के बारे में हम आपसे बात करेंगे। इसमें हम सबसे पहले आपको ये बताएंगे कि जो लाइब्रेरी में शेल्स हैं उस पर अरेंजमेंट होना कितना जरूरी है, और डिफरेंट अरेंजमेंट होता है, किताबों के लिए अलग होता है, पीरियोडिकल्स के लिए अलग होता है, या लाइब्रेरी में कई तरह के मटेरियल्स आते थे। पहले तो ग्लोब्स भी होते थे, या रेफरेंस बुक्स हैं, चार्ट्स भी हैं, बहुत सारी चीजें होती थी। स्कूल लाइब्रेरीज को लेकर देखेंगे आपको, वहां पर छोटे बच्चों के लिए अलग तरह की चीजें आती हैं जो हमें उनको दिखानी होती है, या हाँ प्रैक्टिकली जो दिखा के आप सिखा सकते हैं कई चीजें, तो स्कूल में उस तरह का भी व्यवस्था होती है लाइब्रेरीज में आपको समझाने के लिए। तो उन सभी चीजों को हम कैसे लेकर चलते हैं, और जैसे आपको एन मौके पे जब क्लास में टीचर को जरूरत पड़ती है किसी भी चीज की, तो आप फट से जाकर के निकाल के यू कैन गिव देम। उस पॉइंट ऑफ व्यू से जो है हमारा शेल्फ अरेंजमेंट, स्टैकिंग और इसका क्लीनिनेस करना, या इसकी स्टॉक वेरिफिकेशन करना, हर साल के बाद हम वेरीफाई भी करते हैं कि हमारे पास कौन सी चीजें हैं, कौन सी चीजें ऐसी हैं जो खो गई हैं या टूट गई हैं या फट रही हैं, उसको कहते हैं वीडिंग। हम उसमें से वीड आउट भी करते हैं मटेरियल को। तो ये सारा जो चैप्टर है हमारा इसी के बारे में है, क्योंकि अनवांटेड मटेरियल जो होता है वो खाली जगह हमारी घेर लेता है। लाइब्रेरी इज अ ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म, ये हर दिन बढ़ता रहता है। इसके लिए हमें जो पुरानी चीजें हैं जो यूज नहीं हो रही हैं, या ऐसी बुक्स जो हैं थोड़ी ऑब्सोलीट हो गई हैं, ये नहीं कि जिनका आर्काइवल पर्पज है, उन्हें तो हम रखते ही हैं, उनको हम बाइंड वगैरह कराते हैं। जो जैसे कंप्यूटर साइंस में आप देखेंगे तो बहुत सारी चेंजेस आते रहते हैं, तो उसमें नया ऐड करना बहुत जरूरी हो जाता है और पुराने चीजों को वीड करना बहुत जरूरी हो जाता है। सो यू नीड टू रिमूव देम फ्रॉम द शेल्स। दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू टॉक टुडे। इसमें जो हमने जब ये लेसन बनाया है आप लोगों को समझाने के लिए, पढ़ने के लिए, इसको हमने इस विस्तार से बनाया है कि पहले जो हम बात करेंगे वो करेंगे हम वेज टू अरेंज बुक्स एंड पीरियोडिकल्स। किताबें और पीरियोडिकल्स जो मैगजीन जर्नल्स हैं, इन्हें हम किस किस तरह से अरेंज करते हैं, फिर कितनी तरह के स्टैक्स होते हैं। जैसे आप सभी लाइब्रेरी गए होंगे और वहाँ डिफरेंट डिफरेंट शेल्स होती है, इन्हें स्टैक्स कहा जाता है। कितनी तरह के स्टैक्स हैं और शेल्स पे फिर ऑर्डर किस तरह से रखा जाता है, किताबों को किस तरह से शेल्विंग की जाती है, पीरियोडिकल्स को किस तरह से शेल्विंग की जाती है। फिर हम बताएंगे आपको हर डॉक्यूमेंट की केयर किस तरह से करनी जरूरी होती है। अगर आप देखोगे अभी हमारे पास सीडीज और डीवीडीज भी होते थे कुछ दिन पहले, तो उनको केयर करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। एक स्क्रैच लग गया तो वो गया, डीवीडी खराब हो जाता है। तो बेटर ये होता है उनको एक वुडन जगह पे रखा जाए, जहां पर अगर लोहे की जगह से रखते हैं तो उनको टकराव हो जाता है, या उनको अलग अलग बॉक्सेस में रखना है, उनकी क्लासिफिकेशन प्रॉपर करना, ध्यान से रखना है, या जब हम दे रहे हैं तो उसको देख के देते हैं, या अगर हमें लग रहा है ये अब खराब हो रहा है तो उसकी फटाफट उसकी कॉपी की जाती है। ये सब चीजें हम आपको बताएंगे। फिर मेंडिंग और बाइंडिंग में ये नहीं कि हर लाइब्रेरी में एक बाइंडिंग सेक्शन होता है, मेंडिंग सेक्शन होता है, नहीं, हम उन डॉक्यूमेंट्स को जो वोन आउट है, टोन आउट है, उनको हम अलग कर देते हैं। जो हमें पीरियोडिकल्स रखने हैं साल के बाद, उन्हें हम अलग करके रखते हैं, उनकी हम डेफिनेटली एक बाइंडिंग करते हैं। और इसके साल, हर साल हम एक अपनी स्टॉक वेरिफिकेशन भी करते हैं कि हमारे पास कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं, कहाँ कौन से हमने लूज किए हैं. इनफैक्ट अगर हमने कोई ऐसा डॉक्यूमेंट लूज किया है जिसकी बहुत इंपॉर्टेंस है तो वी ट्राई टू बाय इट अगेन. या अगर किसी की वजह से वो खो गया है तो उसका कॉस्ट भी वापस लिया जाता है उनसे करके, क्योंकि हम लाइब्रेरी में ये सब चीजें देखी जाती हैं कि कितनी इंपॉर्टेंस है डॉक्यूमेंट की, हम उसे राइट ऑफ कर सकते हैं नहीं कर सकते या हम उसे दोबारा खरीदते हैं. तो हम यही सब चीजों को हमने बुक पे जो आपके चैप्टर में चैप्टर 11 में हमने आपको बहुत सारी पिक्चर्स भी साथ साथ दी हुई हैं, दिखाया है आपको कि स्टैक कैसे होते हैं, डिस्प्ले रैक्स कैसे होते हैं, तो यू कैन वॉच इट देयर, देख सकते हैं. और वैसे भी आप कंप्यूटर का में भी आप डाल के देख सकते हैं. मेंटेनेंस सेक्शन का बेसिक काम क्या है, मेंटेनेंस ऑफ लाइब्रेरी इन्वॉल्व्स कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग ऑफ द स्टैक रूम, डिस्प्लेइंग ऑफ न्यू मटेरियल ऑन द डिस्प्ले रैक्स एंड अरेंजमेंट ऑफ बुक्स एंड पीरियोडिकल्स ऑन द शेल्फ्स. हमारे लाइब्रेरी में जो किताबें आती रहते हैं कंटिन्यूसली उस पर ध्यान रखना पड़ता है कि नई किताबें आए हैं, नई किताबें डिस्प्ले में जाती हैं तब टेक्निकल प्रोसेसिंग होने के बाद, और जो पुरानी पहले डिस्प्ले में होती हैं उन्हें हम हटा के उनको हम शेल्विंग करते हैं. पीरियोडिकल्स डैमेज्ड एंड टोन बुक्स हैव टू बी बाउंड, ओल्ड एंड ऑब्सोलीट डॉक्यूमेंट्स विच हैव नो लॉन्गर इन यूज हैव टू बी विड्रॉन फ्रॉम द स्टैक्स. दिस ऑल्सो इंक्लूड्स फिजिकल केयर ऑफ द बुक्स विच इज देयर प्रोटेक्शन फ्रॉम द लाइट डस्ट इंसेक्ट्स मॉइस्चर एंड हीट. यही सब चीजें जो हम बता रहे हैं आपको कि इन सब चीजों की हमें फिजिकली भी ध्यान रखना पड़ता है कि ओवर डस्ट तो नहीं हो रही है किताबों पे या बहुत ज्यादा हीट हो रही है. वैसे आजकल तो सभी लाइब्रेरीज एसी हैं, ओवर डस्ट हीट इंसेक्ट्स भी आते हैं बुक्स में जो बहुत ज्यादा यूज नहीं होती हैं, बुक्स अलग हो जाती हैं, पर आपको अपने मेंटेनेंस सेक्शन से उनको क्लीन करवाना, डस्ट करवाना. बहुत ज्यादा मॉइस्चर या बारिश आई है कहीं से, छत टपक तो नहीं रही है जो पानी गिर रहा है बुक्स पे, तो ये सब चीजों का काम जो है मेंटेनेंस वर्क के अंडर आता है. लाइब्रेरी में बहुत सारे सेक्शंस हो मेंटेनेंस का, ये काम बहुत जरूरी है. जैसे आप किसी बिल्डिंग की मेंटेनेंस करते हैं, अपने घर की मेंटेनेंस करते हैं, इसी तरह से लाइब्रेरी में मेंटेनेंस वर्क करना बहुत जरूरी है. Maintenance work is related to many sections of the library. For example, processing section makes available new material all the time. There is need to shelve these books within the already existing collection. This creates problem for shelving when books of the same subject are received in large numbers. These books have to be accommodated on the shelves without disturbing the order and arrangement of the other documents, other collection. जब नई किताबें आती हैं आपको पता है इन बुक्स में, जैसे हमारे पास एक सब्जेक्ट में और 20 किताबें आ गई हैं इस महीने में, उन्हें भी हमें उसी शेल्फ में लगाना है, मगर हमारे पास जो ऑलरेडी किताबें हैं उन के अरेंजमेंट को हमें डिस्टर्ब नहीं करना, उन्हें खराब नहीं करना है. अगर हमें ऐसा कुछ लग रहा है कि उसमें ऐसी कोई किताब है जो शायद बहुत ज्यादा यूज नहीं हो पा रही है, उसको हम वहां से हटा सकते हैं या आर्काइवल सेक्शन में डाल सकते हैं उसे, और अरेंजमेंट उस पॉइंट ऑफ व्यू से होता है ताकि हमारी जो क्लासिफिकेशन ऑर्डर है उसके अकॉर्डिंगली होता है. उसमें एक बुक नंबर भी दिया होता है, बुक नंबर से हम अल्फाबेटिकली भी अरेंज करते हैं. तो ये सभी चीजें ध्यान में रख के वी कीप ऑन एडिंग न्यू कलेक्शन टू आर लाइब्रेरी. पुराने को हल्का सा देखते हैं कहाँ क्या जरूरत है, उसको हटा देते हैं. ये सब तब आती हैं हमारे पास किताबें जब टेक्निकल सेक्शन इस पे अपनी छाप डाल चुका होता है, उस पे एक टेक्निकल प्रोसेसिंग हो चुकी होती है, क्लासिफिकेशन कैटलॉगिंग हो चुकी होती है, उसके बाद ही ये मेंटेनेंस में आती है. सर्कुलेशन सेक्शन इज ऑल्सो गेटिंग इन्वॉल्व, क्योंकि ये सारा काम जो है मेन एम सभी का क्या है, इसको किताबों को इशू करना है ताकि लोग पढ़ें, इन्हें किताबें यूज करना जब आए लोग पढ़ें, तो मेन काम आउटकम जो है इसका आउटपुट बेसिकली यही है कि किताबों का यूज होना बहुत जरूरी है. द यूजर्स कंटिन्यूसली पिक अप बुक्स फ्रॉम द स्टैक्स एंड देन दे आर इशूड एंड इवेंचुअली रिटर्न बैक. Upon their return, the users and these books have to be put back on their proper shelves on the stacks. अगर देखा जाए, अगर आप किसी normal किसी भी स्टाफ को आप बोलेंगे कि इन किताबों को फाइल करो, उसे नहीं आएगा, उसे नहीं पता होगा. या कोई रीडर आता है लाइब्रेरी में, उसने बुक निकाला लाइब्रेरी से और टेबल पे नहीं छोड़ा और कहीं और लगा दिया, कहते हैं मतलब once the book is misplaced, is missed, filed, तो वो ऑलमोस्ट लॉस के बराबर हो जाती है, बिकॉज यू वॉन्ट बी एबल टू ट्रेस इट बैक. आपने क्लास नंबर के हिसाब से उसे वापस नहीं लगाया, आपका अगर 300 नंबर का किताब 900 नंबर में लग गया तो आप 900 में जाएंगे नहीं कभी उसको ढूंढने, अनलेस एंड अनटिल जब आपकी स्टॉक वेरिफिकेशन होगी, आप देखोगे अरे यहाँ की किताबें तो यहाँ आई हुई है. तो इस तरह का पॉइंट ऑफ व्यू ये है, कहने का मतलब ये है कि एक प्रोफेशनल जो भी आपके पास सपोर्ट हो उन्हें आपको ट्रेन करना पड़ता है, समझाना पड़ता है कि किस तरह से आपकी बुक्स को फाइल किया जाता है अकॉर्डिंग टू द क्लास नंबर्स, पहले क्लास नंबर फिर उसके बाद बुक नंबर। अगर सेम क्लास नंबर की 10 किताबें हैं तो फिर हम बुक नंबर को अल्फाबेटिकली चेक कर लेते हैं ए टू जेड में कैसा आता है, डिक्शनरी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम उसको उसी तरह से अरेंज करते हैं। देयरफॉर द वर्क रिलेटेड टू प्रॉपर शेल्विंग, रीशेल्विंग एंड मेंटेनेंस ऑफ द कलेक्शन इज कंटिन्यूअस इन नेचर, देयर इज नो डाउट अबाउट इट, इट कीप्स ऑन हैपनिंग। आप देखेंगे स्कूल में तो इतना सारा इश्यू रिटर्न होता रहता है, तो कंटिन्यूअसली किताबें निकलती हैं, वापस जाती हैं, तो ये इस सेक्शन का बहुत बड़ा काम हो जाता है ताकि वो वापस अपनी अपनी जगह पे किताबें चली जाएं। बिसाइड्स दिस, वर्क रिलेटेड टू पीरियोडिकल्स इज सेपरेट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द लाइब्रेरी वर्क। Effective service involving periodicals can be provided only by separating them from the rest of the library. आपका अगर library अच्छा है, बहुत ज़्यादा बड़ी भी नहीं है, still अगर छोटी school library भी है उसमें भी आप अपने periodicals का जो display है वो अलग से रख सकते हैं, क्योंकि periodicals का books के साथ कुछ लेना देना नहीं होता। तो उस तरह से effective use, अच्छा use हो जाएगा आपका periodicals का भी और आपकी बुक्स का भी। मेंटेनेंस सेक्शन परफॉर्म्स अ नंबर ऑफ टास्क ऑन द डेली बेसिस फॉर कंसर्न स्टाफ इज रिस्पॉन्सिबल। किन किन चीजों के लिए मेंटेनेंस सेक्शन रिस्पॉन्सिबल है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज है उसमें शेल्विंग, रीशेल्विंग, जब किताबें वापस आ जाती फिर वो रीशेल्विंग हो जाती है उनकी। कीपिंग बुक्स एंड मटेरियल्स इन ऑर्डर एंड मेंटेनिंग क्लीनलीनेस ऑफ द शेल्व्स एंड स्टैक रूम्स, ये भी एक बहुत जरूरी काम है, बहुत इंपॉर्टेंट काम है, क्लीनलीनेस ऑफ द लाइब्रेरी। अदरवाइज बहुत जल्दी मिट्टी आ जाती है, जिस तरह के मौसम में हम रहते हैं नॉर्थ इंडिया में तो बहुत ज्यादा ये वाली दिक्कतें हैं। वैक्यूम क्लीनर होना बहुत जरूरी है, वैक्यूम करवाना, बुक्स को क्लीन करवाना, गीला कपड़ा नहीं लगाना है, ये सब चीजें है इम्पॉर्टेंट और ध्यान में रखनी पड़ती है। नहीं तो एक बहुत इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट हो, कोई अगर गीला कपड़ा मारते उसमें फंगस लग जाएगी, वो खराब हो जाता है। सुपरविजन ऑफ द कलेक्शन, कंजर्वेशन, प्रिजर्वेशन ऑफ द मटेरियल इंक्लूडिंग रिपेयरिंग एंड बाइंडिंग। रिपेयरिंग एंड बाइंडिंग हम बाहर से करा लेते हैं, पर छोटा मोटा जैसे कहीं टेप लगाना है या छोटी चीजें करते हैं वो हमारे पास जो सपोर्टिंग स्टाफ होते हैं उन्हें भी सिखाया जाता है कि ये पेज हट रहा है या क्रैक हो रहा है, कुछ हो रहा है, उसको हम छोटा मोटा प्रिजर्वेशन खुद भी कर सकते हैं। स्टैकिंग एंड वीडिंग, सिक्योरिटी ऑफ द लाइब्रेरी मटेरियल, ये सब मेंटेनेंस सेक्शन का ही काम है। अब इसमें पहला जो पॉइंट है हमारा शेल्विंग एंड स्टैकिंग, क्या किस तरह की शेल्विंग होनी जरूरी है और स्टैकिंग किस तरह से हम करते हैं लाइब्रेरी में। अगर आपको ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि लिस्ट आउट द एक्टिविटीज ऑफ द मेंटेनेंस सेक्शन, अब आपको आसानी से जवाब आ सकता है कि मेंटेनेंस सेक्शन के तो बहुत सारे काम है, उनका क्लीनलीनेस का ध्यान रखना, शेल्विंग रीशेल्विंग करना है, लाइट हीट से बचाना है, दिस ऑल थिंग्स विल कम देयर, कि ये मेंटेनेंस सेक्शन का काम है। लाइब्रेरी चाहे कितना छोटा बड़ा हो पर जो सेक्शंस हैं वो हर जगह उतने ही रहते हैं, सेक्शंस कहीं भी कम नहीं होते, चाहे एक ही बंदा काम कर रहा है पर उसे भी ये सब सेक्शंस को ध्यान में रख के ही काम करना है। एक्विजिशन में खरीदने का काम है आपका, टेक्निकल सेक्शन में आपको क्लासिफिकेशन कैटलॉगिंग का काम है, मेंटेनेंस में आपको मेंटेन करना है। किसी भी सॉफ्टवेयर में आप देखोगे वहां पर 6 या 7 सेक्शंस उन्होंने दिए हैं, ऊपर से लेकर नीचे तक, एक्विजिशन से लेकर के रिपोर्टिंग तक हम चले जाते हैं। इसी तरह से हर लाइब्रेरी के सेक्शंस इम्पॉर्टेंट है, चाहे वो छोटी है चाहे वो बड़ी है। शेल्विंग एंड स्टैकिंग में क्या करते हैं हम, द डॉक्यूमेंट्स आफ्टर प्रोसेसिंग आर टू बी प्रॉपरली शेल्व्ड एंड डीशेल्व्ड एंड डिस्प्लेड। The arrangement on the shelves should ensure that most used books are in prominent places and not strictly as per the classification scheme. Mostly हमने देखा हुआ है कि हम देखते हैं चाहे जो भी हम किताबें जब हम शेल्व करते हैं, डिस्प्ले करते हैं, हम कोशिश करते हैं क्लासिफिकेशन के हिसाब से हम लगाते हैं बुक्स। यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है हम सभी लोगों को जानने के लिए कि अपनी लाइब्रेरी के हिसाब से भी आपकी शेल्विंग होती है कभी कभी। अगर आपको पता है मेरी लाइब्रेरी में ये किताब इस पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा पड़ेगी तो मैं उसे, अगर वो मैं देखती हूँ एजुकेशन की बुक्स बहुत ज्यादा यूज हो रही है और मेरे पास एक इंटरडिसिप्लिनरी किताब आ जाती है एजुकेशनल साइकोलॉजी, तो मैं इसे कोशिश करूंगी एजुकेशन में ही डालने की, बिकॉज आई नो कि ये एजुकेशन में ज्यादातर यूज हो जाएगी ना कि साइकोलॉजी में। साइकोलॉजी में मेरे पास बहुत ज्यादा लोग नहीं है पढ़ने के लिए, तो वहां पर हम क्लासिफिकेशन पे इतना जोर नहीं देते, हम उस पॉइंट ऑफ व्यू पे जोर देते हैं ताकि हमारे पास किस तरह का यूसेज ज्यादा है। मेरी एक्चुअली ये बुक कहाँ पर ज्यादा यूज हो जाएगी. ओवर साइज बुक्स आर टू बी प्लेस सेपरेटली. हाँ, कभी कभी ऐसा होता है कि आप देखेंगे चार्ट्स, उसमें कितने सारे लंबे लंबे किताबें भी आती थी. बहुत सारी किताबें ऐसे भी होती जिनको प्रॉपर स्टैक में नहीं कर सकते. उसके लिए आपको देखा होगा जो हमारी शेल्स हैं वो रीडिफाइन हो जाती है. एक को हटा के दो को बड़ा किया जाता है, वो एडजस्टेबल शेल्व्स जिसे कहते हैं. ऐसा भी हम लाइब्रेरी में 5-10 रखते हैं स्टैक्स, ताकि हम उन्हें रीएडजस्ट करें, ताकि उस पर जो लंबी किताबें हैं बड़ी हैं उनके कोने ना टूटे, वो गिरे ना. उस तरह से हम उनको वहां भी रखते हैं, पर क्लासिफाई करते हैं अकॉर्डिंगली, अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट. ये एक जनरल तरीका है अपनी लाइब्रेरी में आप किस तरह से मैक्सिमम यूसेज कर सकते हैं. और आपको जो स्पेस है डॉक्यूमेंट्स में, इंश्योर होना चाहिए कि वेस्टेज ना हो स्पेस की. स्पेस का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हो जाना चाहिए. उस तरह से आप अपने स्टैक्स को लगा सकते हैं. ऑल काइंड्स ऑफ मटेरियल विच इंक्लूड्स बोथ एंड नॉन बुक मटेरियल आर टू बी प्लेस्ड प्रॉपरली. डॉक्यूमेंट्स शुड बी शेल्ड एंड टू बी allotted proper space on the shelves. This has to be a proper lighting sufficient provision for the future growth of the library. हमारे पास एक proper shelving, reshelving का arrangement होना जरूरी है. उसके अलावा हमें light भी sufficient देखनी चाहिए, ताकि अगर last shelf तक कोई जा रहा है वहां पर लाइट नहीं है या एयर नहीं है तो वहां तक तो कोई जाएगा नहीं. तो मींस अगर आपका ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री बिल्कुल आपने कहीं कोने में लगा लिया, वो क्योंकि उनका 900 नंबर आता है DDC के हिसाब से, तो वहां तो कोई पहुंचेगा नहीं. इट्स नॉट लाइक दैट. इट हैज टू बी टेकन केयर. वो हमारे जो शेल्विंग और स्टैकिंग का है, इन लोगों का जरूरी ये काम है. कई लोग कहते हैं कि क्लासिफिकेशन गलत हो गया तो ये सही नहीं, ये लग नहीं पाएंगे. पर क्लासिफिकेशन एक हद तक ही जरूरी पालन करना है. उसके अलावा फिर आप अपनी लाइब्रेरी को अपने हिसाब से भी देख सकते हैं कि जहां पर मुझे जरूरत लग रही है उस हिसाब से हम अपना करते हैं. ड्यूटीज ऑफ द स्टाफ रिक्वायर टू बी अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्क फ्लो, adherence to the standards and attention to details. It is the responsibility of the staff belonging to stack management to ensure that material is properly shelved, call numbers are in order, support to new services and projects are planned and implemented on the timely basis. ये सब काम हम निर्धारित जो काम है हर बंदे को दिया जाता है कि तुम्हारा काम है मटेरियल प्रॉपरली शेल्व होना चाहिए, ये तुम्हारा इसके बाद जो डिस्प्ले के बाद ये ऊपर जाना चाहिए. उससे पहले हमें ये भी देखना है शेल्व करने से पहले क्या इस पे क्लास नंबर लगा है नहीं लगा है, क्या इसके स्पाइन पे स्लिप लगी है नहीं लगी है. ये सब चीजें हमें ध्यान से देखना पड़ता है और ये सभी काम जो है मेंटेनेंस में ही किया जाता है. इसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो है हमारा शेल्विंग मेथड. अभी तो हम ये कह रहे थे कि स्टैक्स कितनी तरह, किस तरह से हम किन किताबों को कैसे रख सकते हैं अपनी लाइब्रेरी में. अब हम शेल्विंग मेथड्स की बात करेंगे. प्रॉपर शेल्फ अरेंजमेंट इज कंसिडर्ड एज अ टूल फॉर मेजरिंग परफॉर्मेंस. अगर आपकी लाइब्रेरी बहुत एक अच्छे तरीके से लगी हुई है, अरेंज बहुत अच्छे से हुआ है मेटेरियल, आप समझ लिए वो क्लासिफिकेशन कैटलॉगिंग के बराबर ही एक और टूल आप यूज कर रहे हैं, क्योंकि आपको इधर उधर भटकना नहीं पड़ रहा है उस किताब को ढूंढने के लिए. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द लाइब्रेरी कि आपका क्लासिफिकेशन कैटलॉगिंग को आप एडहेयर करके आपका अरेंजमेंट भी बहुत अच्छी तरह से हुआ है, जिससे कि आपका एक देखा जाए तो मतलब आपकी एक कामयाबी मानी जाती है उस लाइब्रेरी की, जहां पर किसी ने जो मांगा और वो फटाफट आपको मिल रहा है. उससे सेटिस्फेक्शन और जो भी है आपके रियलाइजेशन ऑफ द गोल, सेट गोल्स है, ये जल्दी एडहेयर हो जाते हैं, जल्दी आप फॉलोअप हो जाते हैं. आफ्टर इंट्रोडक्शन ऑफ ओपन एक्सेस इन लाइब्रेरीज द रोल ऑफ शेल्विंग हैज टेकन अप मोस्ट प्रायोरिटीज इन द लाइब्रेरी. अब तो ये बात पुरानी लग रही है हमें कि पहले अलमारियों में बंद और ताले में किताब होती थी, तो इसलिए ज्यादा किसी को अलाउड नहीं होता था कि चाबी लेकर के जाकर के खोल के उसको एक किताब निकाल के. नाउ इट्स नॉट लाइक दैट. अब ओपन एक्सेस सिस्टम है एंड मोस्ट ऑफ द 99% लाइब्रेरीज में ओपन एक्सेस सिस्टम है. आपने खुला रखा हुआ, उसमें थोड़ा सा जो है जो अटमोस्ट केयर है लाइब्रेरीज को देखना पड़ता है वो है शेल्विंग का आपको ध्यान जरूर रखना पड़ता है. विदाउट एक्यूरेट रीशेल्विंग ऑफ रिसोर्सेज इफेक्टिव लाइब्रेरी ऑपरेशंस वुड बी इम्पॉसिबल फॉर लाइब्रेरी स्टाफ एंड क्लाइंट्स. वो सीधी सी बात है, अगर आपने वापस सही तरीके से रीशेल्व नहीं हुए आपके रिसोर्सेज, तो आपके लाइब्रेरी ऑपरेशंस नहीं पॉसिबल होगा. आपका काम जो है वो पॉसिबल ना स्टाफ के लिए ना आपके क्लाइंट्स के लिए जो आपके यूजर्स हैं उन सभी के लिए. इट विल बिकम डिफिकल्ट टू टेक आउट एनी इन्फॉर्मेशन फ्रॉम योर लाइब्रेरी. इट्स एन एसेंशियल जॉब विच इज द टाइम कंज्यूमिंग एंड रिक्वायर्स मोटिवेटेड स्टाफ टू कैरी आउट इट वेल. शेल्विंग ऑफ द डॉक्यूमेंट शुड बी सच दैट यूजर्स कैन फाइंड द रिक्वायर्ड आइटम्स विदाउट एनी इनकन्वीनियंस. इसका मेन मोटिव है कि हमारे पास जो भी यूजर्स आ रहे हैं, जो भी आपके क्लाइंट्स हैं, उनका काम बहुत जल्दी से जल्दी हो जाना चाहिए. वही शेल्विंग का है. क्लासिफिकेशन कैटलॉगिंग तो हमारे टेक्निकल सेक्शन है, मगर शेल्विंग भी कोई किसी तरह से देखा जाए कम टेक्निकल नहीं है. इफ वी वोंट बी एबल टू शेल्व बुक्स प्रॉपरली सो द रिट्रीवल विल बी लेस. दैट वे वी आर दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रीशेल्व द बुक्स प्रॉपरली. बुक्स मस्ट बी शेल्व्ड इन अ लॉजिकल एंड स्ट्रक्चर्ड मैनर, अदरवाइज लोकेटिंग स्पेसिफिक बुक क्विकली बिकम्स इम्पॉसिबल. मोस्ट पॉपुलर मेथड फॉर शेल्विंग ऑफ अरेंजमेंट इज द क्लासिफाइड मैनर विच शुड बी As per the classification scheme used by the library, some of the methods of shelf arrangement are discussed. देखा जाए तो हम सबसे इम्पोर्टेंट जो हमारा मेथड जो हमने देखा गया है यूज किया है वो है क्लासिफिकेशन का. उसमें हम एज पर क्लासिफिकेशन ही शेल्फ अरेंजमेंट करते हैं, पर इसमें भी बहुत सारे हैं तरीके हैं किस तरह से हम बुक्स को अरेंज करते हैं. नंबर वन पे जो है वो हम क्लासिफाइड ऑर्डर कहते हैं. क्लासिफाइड ऑर्डर में यू ऑल नो कि मोस्ट ऑफ द लाइब्रेरीज डिवे डेसिमल क्लासिफिकेशन को यूज करते हैं. डिवे डेसिमल क्लासिफिकेशन न्यूमेरिकल क्लासिफिकेशन है जिसमें तीन डिजिट के बाद एक डॉट लगता है. डॉट के बाद जो बेसिक नंबर है हमारा फर्स्ट थ्री डिजिट बता देता है हमारा बेसिक नंबर, और उसके बाद जो डॉट के बाद जो नंबर होता है वो डीपर क्लासिफिकेशन हो जाती है कि आपकी बुक इंडिया से बिलोंग करती है या आपके इसमें एजुकेशन अंडर के साथ आपका एलिमेंट्री एजुकेशन है, एलिमेंट्री एजुकेशन में अंदर आप क्लास टू की बुक है. तो वो सब पॉइंट के बाद चला जाता है वो सब चीजें. तो इस तरह से जो सबसे इम्पोर्टेंट अरेंजमेंट देखा गया है वो लाइब्रेरीज में वो है क्लासिफाइड ऑर्डर में ही किया जाता है. और ओपन एक्सेस में ज्यादातर बहुत कम लाइब्रेरीज है जो कोलन क्लासिफिकेशन यूज कर रही है, डिवे डेसिमल क्लासिफिकेशन का इस्तेमाल होता है. It allows libraries around the world to classify and arrange material on the shelves according to the classification scheme. It is remembered that the other categories of material like periodicals, maps, atlases, pamphlets, standards, patents and non-book material also stored separately in the library. Classified order mein bhi hamare paas इन सब चीजों की के लिए भी एक नंबर होता है कि पैम्पलेट को आप क्या नंबर में डालेंगे, चाहे वो 0.5 हो या 0.3 हो, तो सारे आपके पैम्पलेट्स एक जगह चले जाएंगे. तो स्टैंडर्ड्स का भी एक नंबर है. उस तरह से ये सारे अदर देन बुक मटेरियल भी आपका अरेंज हो जाता है इन अ क्लासिफाइड ऑर्डर. इसके अलावा फिर एक ब्रोकन ऑर्डर है. This is arrangement of books not strictly by classified sequence. Here the reference books, fiction books, special collection are shelved separately. ये क्यों ऐसा होता था? कई सम उसमें आपको reference books जो हैं वो तो naturally आपको अलग ही रखनी पड़ती हैं, और fiction books जो हैं वो भी definitely आप उनको भी अलग ही डालते हैं. वो classified के हिसाब से होता है और इसी को हम broken order कहते हैं. इनमें shelves सेपरेटली किया जाता है, स्पेशल कलेक्शन जो है हमारा, ताकि हमें स्पेशली जल्दी से जल्दी पता चल जाता है. फिक्शन में जाना है तो हम फिक्शन में चले जाते हैं, या ये नॉर्मल बुक्स हैं या ये रेफरेंस बुक्स हैं. इसलिए इसको अरेंजमेंट बाय ब्रोकन ऑर्डर कहते हैं. अरेंजमेंट बाय स्पेशल सीक्वेंस, हियर द बुक्स ऑन द सेम सब्जेक्ट आर ब्रोकन इनटू थ्री मेन कैटेगरीज, ओवरसाइज्ड, अंडरसाइज्ड एंड नॉर्मल. यहां पर क्या करते हैं हम, किताबों को तीन तरह के साइजेस में बांटा गया है. एक तो बहुत बड़े जो साइज हैं, और एक जो बिल्कुल बहुत छोटे पॉकेट बुक्स जिन्हें कहते हैं वो भी होते हैं, एक जो नॉर्मल 22 सेंटीमीटर का साइज है वो एकदम नॉर्मल साइज है. तो इसमें भी ये अरेंजमेंट भी कई लाइब्रेरीज ने ऐसा किया हुआ है. कई लाइब्रेरीज सोचते हैं कि रेफरेंस को अलग कर दो, फिक्शन को अलग कर दो, स्पेशल कलेक्शन को अलग कर दो. ये छोटी छोटी लाइब्रेरीज के सेक्शंस हैं बेसिकली, और यहां पर हम साइज के हिसाब से भी करते हैं. पर फिर है अरेंजमेंट बाय एक्सेशन नंबर, जहां पर हम किताबों को जब हम खरीदते हैं लाइब्रेरी में किताबें, उसमें उसका एक नंबर मिलता है, यूनिक नंबर जिसे कहते हैं, वो एक्सेशन नंबर होता है. वो जीरो से शुरू होता है और चलता रहता, बढ़ता रहता है. उसमें कोई ये नहीं है कि ये 500 की किताब है, 5000 की किताब है, या 5 लाख किताबें, सभी को एक ही नंबर मिलता है, और चाहे वो पॉकेट बुक भी हो उसे भी एक नंबर मिलता है। कई लाइब्रेरीज ऐसा करती थी, उससे भी अरेंज करती थी, बट दैट्स नॉट वेरी गुड अरेंजमेंट बेसिकली। उसे ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाता है किताबों को, तो बहुत ही छोटी जिनकी 100-200 किताबें या 1000-2000 किताबें, वो ऐसा लाइब्रेरीज कर सकती हैं, अदरवाइज इट्स नॉट गुड अरेंजमेंट। हम लोगों ने जो अभी तक हम अरेंजमेंट की बात कर रहे हैं, जहां हम मैं बता रही थी आपको कि हम अरेंजमेंट कई छोटी सी लाइब्रेरीज जो है एक्सेशन नंबर से भी करती हैं, जो कि बहुत सही नहीं है। अब एक और अरेंजमेंट है फिफ्थ, वो है अल्फाबेटिकल और बाय ऑथर और टाइटल। कई जो लाइब्रेरीज हैं वहाँ का कलेक्शन बहुत छोटा होता है, वहाँ पर वो ऑथर के हिसाब से भी लगा लेते हैं, या अल्फाबेटिकली ऑथर के हिसाब से लगा ली किताबें, या टाइटल में के हिसाब से लगाए। पर बहुत सारी बड़ी जो मोस्ट ऑफ द लाइब्रेरीज हैं, वहाँ पर ये वाला अरेंजमेंट नहीं चल सकता है। खाली एक देखा जाए तो फिक्शन जो है, फिक्शन को हम अल्फाबेटिकली लगा सकते हैं, ऑथर का जो हमारा है उसको अल्फाबेटिकली अरेंज कर सकते हैं क्लास नंबर देने के बाद, ना कि हम अल्फाबेटिकली पूरे लाइब्रेरी को लगा ले। तो इस सबसे जो बेस्ट अरेंजमेंट देखा जाता है वो है आपका क्लासिफाइड ऑर्डर। इसके बाद हम स्टैकिंग मेथड्स पे आ जाएंगे। There are various kinds of stacking methods available which vary from library to library. Main consideration from the library should ensure that maximum space is utilized and the users too should be able to conveniently and easily move among the stacks. इस तरह के stacks होने चाहिए आपके library में, ताकि जो user है आपका वो move कर पाए ठीक से, और आपका जो space है वो space का utilization बहुत अच्छी तरह से है, light वहां तक बहुत सही तरीके से जाती हो। Stacks ऐसे हों कि बहुत ऊंचे इतने ना हो कि किसी की अगर हाइट कम है तो वहां तक नहीं पहुंचे। वहां पर एक अरेंजमेंट होना चाहिए आपके पास, सो दैट द पर्सन इज यूजिंग दैट स्मॉल लेडर, 2-step ladder, वहां उस पे चढ़ के एक स्टेप्स का होता है वो लगा के रख सकते हैं, ताकि वो वहां पर किताब लेने के लिए उसे किसी पे डिपेंडेंट ना होना चाहिए। Depending on the space available, authorities of a library may decide to use single-faced or double-faced units. पहले तो ज़्यादातर stacks double-faced होते थे। Double-faced में हम लोग एक साइड भी face करके spine को एक साइड लगा देते थे, फिर left side में भी ऐसे ही करते थे, दोनों side के लगा लेते थे usually, but now this is not happening. We are trying to have single-sided wooden racks, जो मोस्टली लाइब्रेरीज में बहुत अच्छे अच्छे racks भी आए हैं, now things are changing also, और पर इस तरह के racks available हैं। Fix shelves with 2 rows, वही है जो जिसमें दोनों rows में होता है, एक की spine एक तरफ हो जाती है, दूसरी की spine दूसरी तरफ हो जाती है, double arrangement हो जाता है, उससे थोड़ा सा ये हो जाता है कि आपको जो है space का ज्यादा utilization हो जाता है। Hinge stacks, here the 2 shelves are joined together with single hinge on one side and one shelf is fixed while the other is mounted in front of the hinge. इस तरह के अरेंजमेंट में आपको भी दो किताबें, दो बुक्स का अरेंजमेंट इकट्ठे हो जाता है, इसमें आपके शेल्फ जो है ज्वाइन हो जाती है हिंज से। फिर है रोलिंग स्टैक्स, इसमें आपका मेटल स्टैक जो है उसके ऊपर एक बॉल बेयरिंग लगी होती है जो स्लाइड कर लेता है, वो उसके अंदर आपको किताबें डाल सकते हैं पुराने और ऊपर डिस्प्ले कर सकते हैं। कॉम्पैक्ट स्टोरेज तो एक अच्छा स्टोरेज तरीका है, इसमें आप को पूरी तरह से जैसे एक नीचे ट्रैक डल जाता है आपके फर्श पे, उस पर आप ट्रैक डाल के उसमें आपके यूनिट्स, आपको जितनी मर्जी आपके जिस हिसाब से जगह है आपके लाइब्रेरी में उतने हिसाब से अपने यूनिट्स लगा लेते हैं। जैसे पहले हमने 6 लगाया, फिर हमने 15 लगा लिया, ये अपनी स्पेस के हिसाब से। इसमें बस खाली ये हो जाता है डस्ट वगैरह बिल्कुल बुक्स के अंदर नहीं आती है, और जो इंसेक्ट्स हैं, रोडेंट्स हैं, इन सब से भी आपको बुक्स वगैरह बच जाती है। फिर मल्टी टायर स्टैक्स में है, दिस काइंड ऑफ स्टैकिंग कंसिस्ट ऑफ स्टैकिंग फ्रॉम फ्लोर टू द रूफ। बहुत सारी लाइब्रेरीज में क्या होता है, फ्लोर से लेकर रूफ तक उन्होंने पूरे स्टैक कर दिया होता है, पर वहां पर वो एक स्टेयर भी लगा देते हैं साथ में, सो दैट यू कैन रीच देयर। बुक एंड सपोर्ट रेस्ट्स आर ऑल्सो देयर, ताकि जो बुक्स को दोनों बुक तरफ से बुक्स को रखा जाता है, ताकि वो बुक्स गिरे ना, वो भी लोहे के सपोर्ट्स होते हैं जिनको बुक सपोर्टर्स बोलते हैं हम, वहां पर रखे जाते हैं। इसके बाद हम आते हैं शेल्फ रीडिंग ब्लॉकिंग एंड शेल्फ रेक्टिफिकेशन पे, शेल्फ में हम क्या क्या कर डालते हैं, ब्लॉकिंग में क्या करते हैं और शेल्फ रेक्टिफिकेशन में हम किस तरह का काम करते हैं. टू टास्क आर टू बी कैरिड आउट बाय द मेंटेनेंस स्टाफ ऑन अ डेली बेसिस ऑन शेल्फ रीडिंग एंड ब्लॉकिंग. Shelf reading is when one reads every call number on the shelf to ensure that it is in proper order. Blocking is when each book is brought out at to the end of the shelf so that the entire shelf is lined up with the edge on the shelf and the all books are standing upright with a book support placed at the end of the shelf. इसमें मेनली हम यही देखते हैं कि हमारा जो अरेंजमेंट है वो कॉल नंबर से है, तो हम कॉल नंबर रीड आउट करके देखते हैं कि कॉल नंबर के हिसाब से किताबें लगी हुई हैं, और अगर हमें लग रहा है किताबें टीढ़े हो रहे हैं तो वो आखिर वाली किताब को निकाल के वी क्रिएट अ स्पेस इन बिटवीन सो दैट द बुक्स आर केप्ट अपराइट स्ट्रेट और उनमें एक सपोर्ट डाल देते हैं हम, जिसको बुक सपोर्टर कहते हैं, लोहे का एक सपोर्ट होता है, छोटा भी मिलता है बड़ा भी मिलता है, वो हम डाल देते हैं. बुक्स आफ्टर ब्राउजिंग बाय द users are often misplaced on the shelves. Although users are strictly instructed not to replace the books on the shelves, they are still do so. It is known for the fact that wrongly placed books are good for as lost. जैसे मैंने आपको बताया, कभी कभी हम तो लिख भी देते हैं कि प्लीज आप बुक्स वापस ना शेल्फ करें, ये लाइब्रेरी स्टाफ खुद करेंगे, पर कई लोग वापस रख देते हैं पढ़ के. कभी कभी वो गलत शेल्फ हो जाती जिसकी वजह से वो उसका बुक ऑलमोस्ट इज लॉस्ट ओनली इन दैट वे. यहां से हमें अगर जो सवाल पूछा जाता है, लिस्ट आउट द वेरियस टाइप्स ऑफ स्टैकिंग सिस्टम्स अवेलेबल फॉर लाइब्रेरीज, तो स्टैकिंग सिस्टम्स में आप बता देंगे जो मैंने आपको बता दिए किस किस तरह टू टेयर है, और कई जो लाइब्रेरीज हैं फर्स्ट से लेकर के नी ऊपर तक स्टैक्स बना देते हैं, इस हिंज्ड है, और ये सब सारे आपके जो है उसका आंसर है. अभी तक हमने सिर्फ बुक्स की बात की, किस तरह से बुक को हमें अरेंज करना चाहिए, बुक सपोर्ट किस तरह से देना चाहिए, उनका अरेंजमेंट किस तरह से स्टैक होने चाहिए. अब हम जो बात करेंगे वो हम करेंगे मेंटेनेंस ऑफ पीरियोडिकल्स, क्योंकि पीरियोडिकल्स भी इक्वली एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है हमारे लाइब्रेरी कलेक्शन का. मेनी लार्ज लाइब्रेरीज स्पेशली यूनिवर्सिटी एंड रिसर्च लाइब्रेरीज मेंटेन अ सेपरेट पीरियोडिकल डिविजन विच यू ऑल नो के होता है, डिविजन ही एक अलग ही फ्लोर भी होता है कई लाइब्रेरीज में, पीरियोडिकल्स का अलग होता है क्योंकि पीरियोडिकल्स तो एड होते रहते हैं. पीरियोडिकल डिविजन इज द प्लेस वेयर द इन्फॉर्मेशन नीडेड कैन बी फाउंड इन जर्नल्स मैगजीन न्यूज पेपर्स एंड अदर सीरियल लिटरेचर. यूजली द ओपन शेल्फ अरेंजमेंट इज अडोप्टेड फॉर दिस सेक्शन. एक्चुअली जो है अरेंजमेंट पीरियोडिकल्स को हम किसी अलमारी या किसी लॉक में तो रख नहीं सकते, इनके लिए एक अरेंजमेंट ऐसा ही होता है जहां पर ओपनली रखे जाते हैं, जहां पर आप रेफरेंस के लिए ये वाले डॉक्यूमेंट्स हैं, मोस्टली ज्यादातर ये रेफरेंस डॉक्यूमेंट्स यूज होते हैं, या कोई रिसर्च कर रहे हैं या पढ़ रहे हैं, न्यूज पेपर रिलेटेड है, कुछ करंट टॉपिक से रिलेटेड है, इसको जहां छोटी लाइब्रेरीज हैं इसको अल्फाबेटिकली अरेंज करके रखते हैं टाइटल्स को. अगर हमारे पास छोटी लाइब्रेरी है, 10-15 जर्नल्स आ रहे हैं, तो अल्फाबेटिकली करेंगे. अगर थोड़ी बड़ी लाइब्रेरी है और हमारे एक ही सब्जेक्ट में कई जर्नल्स आते हैं, तो फिर हम उसको बिल्कुल डिक्शनरी की तरह लगा करते हैं, अरेंजमेंट उसका अल्फाबेटिकली हो जाता है कि एजुकेशन का जो है स्टैक इसमें ए से शुरू करके जेड तक जाएंगे, फिर एजुकेशन के बाद दूसरा आ गया हमारा कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड है, कुछ तो कंप्यूटर साइंस को अलग कर देते हैं, वो थोड़ा जहां पर आपका पीरियोडिकल्स काफी ज्यादा होते हैं. वर्क रिलेटेड टू द पीरियोडिकल्स, वर्क कंसर्निंग पीरियोडिकल्स इज सेपरेटेड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्क रिलेटेड टू अदर डॉक्यूमेंट्स इन द लाइब्रेरी ड्यू टू द फैक्ट दैट प्रेजेंटली अ मेजोरिटी ऑफ लाइब्रेरी बजट इज स्पेंड ऑन द सब्सक्रिप्शन ऑफ द पीरियोडिकल्स. ये वाकई सच बात है कि बुक्स से ज्यादा पीरियोडिकल्स पे ही स्पेंड होता है, क्योंकि आपका जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है और लेटेस्ट आर्टिकल्स है, करंट इन्फॉर्मेशन है, वो सारी आपको पीरियोडिकल्स के थ्रू ही मिलती है. इससे ज्यादा मतलब बुक्स से ज्यादा पीरियोडिकल्स पे स्पेंडिंग है बहुत सारी लाइब्रेरीज में. ऑल्सो प्रेजेंटेड रिसर्चर्स डिपेंड मोर ऑन द लिटरेचर कंटेंट इन द पीरियोडिकल्स रादर देन इन द बुक्स, क्योंकि बुक्स में ये आखिर में आ जाता है. दे आर द फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन ट्रेनर्स कि जहां आपके पास अखबार में छपानी या किसी ने आर्टिकल बनाया ना, फटाफट वो छप जाता है, क्योंकि कहीं वीकली है मंथली है, बुक को आने में सालों लग जाते हैं. सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज फॉर करंट एंड रिसर्च बेस्ड थिंग्स वी प्रेफर to go for a periodical only. Therefore, the maintenance of periodical requires greater skill on the other part of the library staff to handle the work. Work related to periodical calls for attentiveness and complete डेडिकेशन। पीरियोडिकल्स में ये भी देखना पड़ता है कि अगर हमारे पास 12 इश्यूज है, कौन कौन सा इश्यू बीच में डिले हुआ है, नहीं आया है, अगर नहीं आया है क्यों नहीं आया है, हमें उसके रिमाइंडर्स बनाने पड़ते हैं, और अगर कहीं से नहीं अरेंज हो पाया तो हम कहीं से फोटोकॉपी आकर के अपने लोगों के लिए अरेंज करते हैं। बुक्स में ऐसा नहीं होता है, तो इसमें हमको डेडिकेशन की ज्यादा जरूरत होती है, स्टाफ की ज्यादा जरूरत होती है, ट्रेंड स्टाफ की कह सकते हैं हम। वर्क रिलेटेड टू पीरियोडिकल्स में क्या है, सबसे पहले आपको रिसीविंग, रिकॉर्डिंग, स्टैम्पिंग ऑफ द इश्यूज होता है। आपकी लाइब्रेरी ने जो पूरे साल के लिए पीरियोडिकल्स सब्सक्राइब करवाए हैं वही आपके पास पीरियोडिकली आते रहते हैं। अगर कोई वीकली है तो वीकली आपके पास आएगा। कहीं कई बार हम डायरेक्ट सब्सक्राइबर्स से लेते हैं, कई बार हम किसी वेंडर से ले लेते हैं। तो वेंडर से लेने का ये हो जाता है कि आपको इकट्ठे एक बार में आपके पास सभी जर्नल्स आ जाते हैं, और अगर आपने डायरेक्ट किसी अपनी सब्सक्रिप्शन एजेंसी से ले लिया वो आपको जैसे जैसे उनके पास इशू आता रहेगा आपके पास वो आए, तो उसका आपको ख्याल रखना पड़ता है कि आपके पास ये इशू आया नहीं आएगा। फिर रिसीव करने के बाद इसमें स्टैम्प करना, और अगर आपके पास सॉफ्टवेयर में है काम कर रहे हैं तो आपका सॉफ्टवेयर में इसका एंट्री करना, उसके बाद इसको डिस्प्ले करना। सेंडिंग पीरियोडिकल्स टू रीडिंग रूम फॉर यूज, दिस इंक्लूड्स अरेंजिंग करंट पीरियोडिकल्स फॉर डिस्प्ले एंड सेंडिंग देम ऑन टू द शेल्फ। उसमें अरेंजमेंट ऐसा होता है कि जो रिसेंट पीरियोडिकल्स है वो इमीडिएटली आपके पास रीडिंग रूम में आ जाने चाहिए, और जो उससे पुराना वाला है वो उसके पीछे चला जाता है। जो बॉक्स वो इंक्लाइंड शेल्स होते हैं उसमें एक अरेंजमेंट ऐसा होता है कि आपके साल भर के जर्नल्स मैगजीन जो है आपके इसके इस जर्नल के पीछे जमा रहते हैं, ताकि अगर किसी को पुराना इश्यू चाहिए वहां से ले सकते हैं, पर लेटेस्ट आपका रीडिंग के लिए सबसे ऊपर रहेगा। ट्रेसिंग द मिसिंग इश्यूज विच आई वॉज टेलिंग यू के इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो है कि आपका मिसिंग इशू नहीं होना चाहिए, यू हैव टू बी आफ्टर द मिसिंग इशूज। मेंटेन रेलिवेंट रिकॉर्ड्स रिलेटेड टू द पीरियोडिकल्स, इसमें हम रिकॉर्ड भी प्रॉपर बनाते हैं, अगर हम चाहते हैं तो हम करंट अवेयरनेस सर्विसेज भी क्रिएट करते हैं अपनी लाइब्रेरी को कि हमारे पास इस वीक में या इस फोर्टनाइट में इतने जर्नल्स आए हैं, उसको हम सर्कुलेट करते हैं। और इसके बाद है शेल्फ मेंटेनेंस और शेल्विंग, जो भी हमारे पुराने हो जाते हैं इसके बाद जो जर्नल्स हैं पिछले साल के हम निकाल के उन्हें हम बाइंडिंग के लिए भी रखते हैं। जो हमारे इम्पोर्टेंट जर्नल्स होते हैं जिन पे हमने काफी पैसा खर्च किया होता है पिछले साल, वी कीप देम, एंड उसको भी एक एक्सेशन नंबर मिलता है अलग से, जैसे एक किताब को मिलता है इसी तरह से इसको भी, चाहे हमारे पास 12 वॉल्यूम्स का एक सेट है, हमने उसको एक तरह बाइंड करा लिया या दो में करवा लिया ज्यादा बड़ा है, तो उसे एक एक्सेशन नंबर भी मिलता है, फिर उसे हम प्रिजर्व करते हैं। इस तरह से जो बाइंडिंग होने के बाद फिर हम इनकी प्रिजर्वेशन रखना जरूरी है, और फिर 5 साल या 10 साल के बाद इसमें से विड्रॉल करना, वीडिंग आउट करना इज ऑल्सो इक्वली इम्पॉर्टेंट। ये सब टेक्निकल सेक्शन के ही काम हो, ये हमारे मेंटेनेंस सेक्शन के काम हो जाते हैं, टेक्निकल सेक्शन के नहीं, मेंटेनेंस सेक्शन के ये सारे काम हो जाते हैं, ताकि हमारे जो जब हम बाइंडिंग करा रहे हैं, अगर हमें सपोज एक इशू बीच में से नहीं मिल रहा है तो वी ट्राई टू फाइंड आउट, कहीं से भी उसका एक फोटोकॉपी लेते हैं उसको, अगर कहीं से बिल्कुल नहीं मिलेगा तो हम उसमें बता देते हैं कि ये वाला इशू नहीं आया था, जो मिसप्रिंट हुआ था या जो भी हुआ था, वी ट्राई टू नोट इट डाउन देयर। एक्सेस टू पीरियोडिकल कलेक्शन, किस तरह से आप पीरियोडिकल कलेक्शन तक पहुंचते हैं। कलेक्शन इन द पीरियोडिकल डिवीजन इज यूजुअली फॉर यूज ओनली इनसाइड द लाइब्रेरी। फोटोकॉपिंग ऑफ द आर्टिकल्स फ्रॉम लेटेस्ट इश्यूज ऑफ पीरियोडिकल्स मे बी रिक्वेस्टेड बाय द यूजर्स, हाउएवर बैक इश्यूज एंड बाउंड वॉल्यूम्स कैन बी बोरोड फॉर यूजिंग। यूजुअली हम जो करते हैं, जो लेटेस्ट इशू है पीरियोडिकल का, जैसे मैगजीन है या न्यूज़पेपर है या कोई भी जर्नल है, वो हम इशू नहीं करते, क्योंकि दे आर ऑल रेफरेंस डॉक्यूमेंट्स बेसिकली। मगर जब हमारे पास नए आ जाते हैं, पुराने जो हमने बाइंड करके रखे हुए हैं, उनको हम बिल्कुल फिर बुक की तरह इशू कर सकते हैं। इफ एनीबडी वॉन्ट्स टू टेक दम दे कैन टेक इट, पर न्यू यूजली आर नॉट इशूड। आर अगर इन केस आपको बहुत लग रहा है कि किसी को जरूरत होता है तो वो फ्राइडे को हम दे देते हैं, सैटरडे संडे अगर आपका लाइब्रेरी बंद रहता है, स्कूल बंद रहता है, मंडे मॉर्निंग दे कैन गेट यू बैक दीज थिंग्स, दैट वे दे कैन यूज ऑल्सो, और आपका काम भी हो जाता है और उनका भी काम हो जाता है. इसमें आपको देखा जाए तो अगर क्वेश्चन है आप वर्क रिलेटेड टू द मेंटेनेंस वर्क ऑफ द पीरियोडिकल डिवीजन क्या है, आपके पास कितने सारे पॉइंट्स है इसमें लिखने के लिए. वर्क रिलेटेड टू पीरियोडिकल्स में तो आपको रिसीव करना है, स्टैम्प करना है, डिस्प्ले करना है, उनकी एंट्री करनी है, उनका लॉस वो अगर कुछ है वो देखना है, बीच में उसके रिमाइंडर बनाने हैं, ये सब चीजें हमें वर्क रिलेटेड टू द पीरियोडिकल्स है. तो आज हमने यहां तक पीरियोडिकल्स के बारे में पढ़ा, डिस्प्लेइंग का अरेंजमेंट के बारे में पढ़ा है. होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड दिस. थैंक यू वेरी मच.